दक्षिण भारत की इस मंदिर नगरी में पौ फटने वाली है। धुंधले प्रकाश में मैं आधा जागा आधा सोया चला जा रहा हूं कि अचानक चौंक पड़ता हूं। बरामदे में एक सांप कुंडली मारे अलसाया सा पड़ा है। ये खुद चला जाए इसी का इंतजार करना बेहतर होगा। धीरे धीरे भोर का उजाला फैलने लगा है और मैं फिर सांप को देखता हूं। अरे ये सांप कहां? ये तो एक रस्सी है जो छत ठीक करने वालों ने यहां छोड़ दी होगी। रस्सी को धोखे से सांप समझ लेने की ये भूल भारतीयों के जीवन में कभी कभार होने वाली घटना नहीं है, बल्कि ये भारतीय दर्शन का एक जाना पहचाना दृष्टांत है। कई बार हम जो देखते हैं वो नहीं होता जो हम समझते हैं। दूसरे शब्दों में, रस्सी को सांप समझते हुए हमें जिस वास्तविकता का एहसास होता है, उसका अस्तित्व तभी तक है जब तक हम उस पर विश्वास करते हैं। हिंदू दर्शन में छलावा और रहस्यात्मकता के रूपकों की भरमार है। ये सभी माया के उदाहरण हैं। माया यानी ऐसा यथार्थ जिसका अस्तित्व तो है लेकिन अपनी चेतना की सीमाओं के कारण हम इसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। अगर हम इस चंचल और भ्रामक यथार्थ को भेद सकें तभी हमें पवित्र और चिरंतन ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। आज कई लोगों की दृष्टि में ब्रह्म को रहस्य बनाए रखने वाली माया की अवधारणा ही हिंदू दर्शन का मूल तत्व है। हिंदुत्व की इस परिभाषा और विश्लेषण का श्रेय है 8वीं सदी के एक दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु आदि शंकराचार्य को।
न मैं भूमि हूं न जल, न अग्नि न वायु, न इंद्रियां और न इन सब का समूह, क्योंकि इन सभी की प्रकृति अस्थिर और परिवर्तनशील है।
शंकराचार्य ने अपना पहला हिंदू मठ दक्षिण पश्चिम भारत में श्रृंगेरी में स्थापित किया था, जो आज कर्नाटक की एक तीर्थ नगरी है।
To get to Sringeri, you have to take narrow hill roads that wind up through the hills of northern Karnataka.
Sringeri जाने के लिए आपको उत्तरी कर्नाटक की पहाड़ियों के बीच से घुमावदार संकरी सड़कों पर मीलों लंबे कॉफी बागानों, ऊंचे ऊंचे ताड़ के वृक्षों और बांसों के झुरमुट से होकर गुजरना होगा। श्रृंगेरी घास के मैदानों के बीच एक छोटा सा पहाड़ी शहर है। मठ और मंदिर के बीच एक नदी बहती है। शंकराचार्य यानी शंकर ने उस समय प्रचलित हिंदू विश्वासों और प्रथाओं में आमूल चूल बदलाव किया। संपूर्ण उपमहाद्वीप में मंदिरों और विद्यालयों की स्थापना की और कई मायनों में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े धर्म हिंदू धर्म को वो रूप दिया जैसा वो आज है। हालांकि तिथियों को लेकर कुछ मतभेद हैं, लेकिन आमतौर पर माना जाता है कि शंकर का जन्म दक्षिणी भारत के मालाबार क्षेत्र यानी आज के केरल राज्य में 8वीं सदी में हुआ था। प्राचीन भारत की अन्य विभूतियों की तरह शंकराचार्य के आरंभिक जीवन के बारे में भी कई अनिश्चितता और मतभेद हैं। सैकड़ों वर्ष बाद काव्यात्मक शैली में लिखी गई कुछ जीवनियों के अनुसार शंकर के निसंतान माता पिता ने संतान प्राप्ति के लिए नजदीकी मंदिर में शिव की आराधना की। आराधना से प्रसन्न भगवान शिव उनके स्वप्न में प्रकट हुए और वरदान के रूप में उन्हें या तो अत्यधिक प्रतिभाशाली दार्शनिक सर्वज्ञ और गुणवान लेकिन अल्पायु या फिर दीर्घायु किंतु किसी विशेष गुण या प्रतिभा से हीन पुत्र का विकल्प दिया। निसंतान दंपत्ति ने प्रतिभाशाली पुत्र का वरदान मांगा और अपने पुत्र का नाम शंकर रख दिया। वरदान के अनुरूप ही शंकर बचपन से प्रतिभाशाली थे। उन्होंने 8 वर्ष की आयु में चारों वेदों का अध्ययन कर लिया और 16 वर्ष की आयु में उन पर भाष्य भी लिख डाले। लेकिन ये प्रतिभा उनकी माँ के लिए दोधारी तलवार साबित हुई। पिता की तो उनके बचपन में ही मृत्यु हो गई और शंकर से अपेक्षा थी कि वो आदर्श पुत्र की तरह अपनी माँ का भरण पोषण करें। लेकिन शंकर ने 5 वर्ष और कुछ लोगों के अनुसार 8 वर्ष की उम्र में ही सन्यासी बनने की इच्छा प्रकट कर दी। शंकराचार्य का असमय संन्यास एक अपवाद था। एक हिंदू को 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सबसे आखिर में संन्यास आश्रम का वरण करना होता है। लेकिन बाल शंकर अपनी विधवा माँ से संन्यास लेने की अनुमति मांगते रहे और वृद्ध माँ को अपने दिल पर पत्थर रखकर अनुमति देनी पड़ी। शंकर ने संन्यास ग्रहण कर लिया। शंकराचार्य एक महान उद्देश्य से संपूर्ण भारत में विचरण करते रहे। कई धार्मिक गुरुओं से शास्त्रार्थ किया। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप की चार दिशाओं में चार धामों की स्थापना की। उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व में पुरी, पश्चिम में द्वारका और दक्षिण में श्रृंगेरी।
His teachings gained many devoted followers.
शंकराचार्य की शिक्षाओं से प्रभावित होकर कई लोग उनके अनुयायी बन गए और आज भी उनके अनुयायियों की संख्या काफी अधिक है। असल में ये शंकराचार्य के अनुयायी ही हैं जो यहाँ श्रृंगेरी मठ और मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आए हैं। हिंदू धर्म से जुड़े प्रारंभिक विचार हमें वेदों में मिलते हैं। आज से 2500 साल पहले रचे गए उपनिषदों में इन विचारों का विकास हुआ। ये संस्कृत रचनाएं वेदांत यानी वेदों के अंत के नाम से प्रसिद्ध हुई और इनमें वेदों में उठाए गए कुछ सार्वकालिक प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की गई, जैसे हम कहाँ से आए हैं, हम यहाँ क्यों हैं, मृत्यु के पश्चात हम कहाँ जाते हैं। उपनिषदों में पुनर्जन्म और इस जीवन के कार्यों के आधार पर अगले जन्म का निर्धारण जैसे सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। शंकराचार्य ने इन ग्रंथों का गहन अध्ययन मनन किया और उन्हें एक दर्शन पद्धति के रूप में विकसित किया। जॉर्डन गेनरी न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं।
शंकर's ambition was to provide a unified single reading of the
great... एक चिंतक के रूप में शंकर चाहते थे कि हिंदू धर्म ग्रंथों की बहुलता और विविधता को एकीकृत, सुसंबद्ध और एक समान रूप दिया जाए। इसलिए उन्होंने लगभग सभी प्रमुख धर्म ग्रंथों पर भाष्य लिखे और उनकी एक समान व्याख्या करने का प्रयास किया। उनके लिए ये अद्वैत का रूप था, यानी वे मानते थे कि वास्तविक तत्व एक ही है जिसका नाम ब्रह्म है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का मूलभूत आधार है, और ब्रह्म के अतिरिक्त सभी कुछ व्यक्तियों के बीच दिखाई देने वाली भिन्नताओं समेत विश्व के सभी भेद और अंतर महज ब्रह्म है यानी माया है।
शंकर का अद्वैत एकेश्वरवाद से अलग था। शंकर का ब्रह्म गुणों से परे था, ऐसा ईश्वर या सर्वव्यापी दैवीय तत्व जो निर्गुण था।
You cross over a bridge and climb a hill to get to the Shringeri Math.
शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगेरी मठ तक पहुंचने के लिए पुल पार कर चढ़ाई चढ़नी होगी। 8वीं सदी में अपनी स्थापना के बाद से इसका स्वरूप थोड़ा बहुत बदल गया है और लगता है आज के सन्यासियों के आचार व्यवहार में भी अंतर आ गया है, और शायद वो शंकराचार्य के मूल विचारों से कुछ भटक गए हैं। शंकर का विश्वास था कि वैदिक ऋचाओं के महज कर्मकांडों के आदेशों से कहीं अधिक मूल्यवान तत्व मौजूद हैं, जैसे अपने कर्मों को सुधारने और इस प्रकार जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा पाने के लिए मंत्र पाठ ना काफी है। शंकर का मानना था कि ये आत्मा की मुक्ति का सही मार्ग नहीं है। उनका मानना था कि वेदों में, विशेषकर बाद में रचे गए उपनिषदों में ऐसा ज्ञान समाहित है जो मानव और ब्रह्मांड की अनिवार्य एकता पर प्रकाश डालता है, इसलिए वैदिक धर्म को नया रूप दिया जाना चाहिए। कर्मकांडों की अधिकता के स्थान पर वैराग्य, ब्रह्मचर्य और बौद्धिक तप को महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने मंत्रों के स्थान पर ध्यान और चिंतन का सुझाव दिया। ध्यान से प्रत्येक व्यक्ति माया के आवरण को भेद सकता है और अपनी आत्मा व ब्रह्म के तादात्म्य को पहचान सकता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। शंकर के सिद्धांतों को अद्वैत वेदांत कहा जाता है। ब्रह्मांड की एकता को अभिव्यक्त करने के उनके प्रयासों ने कई सुंदर, उन्हीं की तरह रहस्यमय पहेली जैसी पंक्तियों को जन्म दिया।
न मैं ऊपर हूं न नीचे, न अंदर हूं न बाहर, न मध्य में न उस पार, न पूर्व में हूं न पश्चिम में, मैं तो अखंड एक रूप सर्वव्यापी हूं अंतरिक्ष की भांति।
स्थापकाय च धर्मस्य।
शंकर अपने दुरुह उपदेशों को लोकप्रिय बनाने में भी माहिर थे। उन्होंने कई भक्तिगीत और भजन लिखे जो आज भी गाए जाते हैं। कर्नाटक शैली की प्रसिद्ध गायिका एमएस शुभलक्ष्मी की आवाज में शंकर भक्ति में गाया गया ये भजन भज गोविंदम शंकराचार्य की ही रचना है।
भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज।
शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के जिस रूप का प्रचार किया वो बहुत लोकप्रिय हुआ, लेकिन इसके कई ऐसे पहलू हैं जिन्हें सभी हिंदू नहीं मानते। शिकागो विश्वविद्यालय में धर्मों के इतिहास की प्रोफेसर वेंडी डोनिगर।
Shankara is there. Everybody knows about him. Some people use him as their own guide to their own thinking about the meaning of life.
शंकराचार्य के बारे में सभी जानते हैं। कुछ लोगों के लिए वे ऐसे गुरु हैं जो जीवन के अर्थ को समझने में उनका मार्गदर्शन करते हैं, और ऐसे लोगों का मानना है कि जीवन के अर्थ को समझना, उस पर विचार करना ही वास्तविक हिंदुत्व है। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। यह दार्शनिक पक्ष हिंदू धर्म का एक अंश है। अंग्रेज जब भारत आए और उन्होंने ब्रिटिश राज की स्थापना की तो वे शंकर की परंपरा वाली यानी हिंदू धर्म की दार्शनिक शाखा की ओर आकर्षित हुए। उन्हें अच्छा लगा कि यहाँ ऐसी दार्शनिक परंपरा है जिसे वे तालमेल बिठा सकते हैं।
19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी में हिंदू पुनरुत्थानवादियों और राष्ट्रवादियों ने ईसाइयत और इस्लाम के एकेश्वरवादी धर्मों की सशक्त प्रतिक्रिया के रूप में शंकर के अद्वैत को अपनाया। विवेकानंद जैसे धर्म प्रचारकों ने शंकर के विचारों को फिर से प्रचारित और प्रसारित किया, और अद्वैत वेदांत को प्रोत्साहन देने व राष्ट्रीय आत्मगौरव की भावना को जगाने के लिए विद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया। हिंदू धर्म आज भी वैसा ही है जैसा शंकर के जीवन काल में था, अलग अलग रूपों में बटा हुआ, आंतरिक तर्क वितर्क से भरपूर और आस्थाओं के अलग अलग रूपों को स्वीकारता हुआ। हिंदू धर्म का न तो कोई एक निर्धारक ग्रंथ है, न ही कोई एक व्याख्या। इसमें है जीवन और अस्तित्व के संबंध में सम्मोहक प्रश्न और पहेलियां, माया व ब्रह्म को लेकर चिंतन मनन, तर्क वितर्क। यहां श्रृंगेरी में फिर से बारिश होने लगी है, और बारिश से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे हैं।